हरे कृष्णा। तो ये जो पुस्तकों का वितरण है, प्रभुपाद को जब खबर मिलती थी इतनी पुस्तकें वितरण हुई, प्रभुपाद कहते थे ये मेरा जीवन है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो जो भक्त लोग पुस्तक वितरण कर रहे हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं, यहां बैठे हैं, ये जो मूर्ति प्रभुपाद की बड़ी साक्षात है और प्रभुपाद ही उदयपुर में रहते हैं। जैसे भगवान देख रहे हैं ऐसे भगवान के भक्त भी देख रहे हैं। और अगर प्रभुपाद प्रसन्न हो गए, अगर उन्होंने सिफारिश कर दी भगवान श्री कृष्ण के आगे, भाई ये भक्त बड़ा अच्छा है, तो हमारा कल्याण समझो। तो इस समय जो काफी समय से बलदेव दास जो है बहुत ज्यादा पुस्तक वितरण कर रहा है, इसी साल से नहीं कई सालों से, तो उसको आज पुरस्कार दिया जाता है पुस्तक वितरण करने के लिए। प्रभुपाद जी की कृपा के लिए से उसे ये पुरस्कार दिया जाता है और वो आगे आकर इसको ले गए। हरि बोल हरि बोल। फिर ताली बजाना शुरू कर दिया, ताली नहीं बजानी, इतने दूर उसको किलोमीटर दूर रखते हो, इधर नजदीक रखा करो। तो आज कितनी तारीख है, कैलेंडर कहाँ है, कैलेंडर को सामने रखा करो। आज कितनी तारीख है किसी को नहीं पता, 6 तारीख। नेटरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है वो ये डिसाइड होगा तो उससे पढ़ेंगे। अमानित्वाम अधम्बित्वाम अहिंसा शांतिरार्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यः मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् आसक्तिर्ना विश्वसंगा पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तेत्वम् इष्टानिष्टोपपातिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याविचारिणी विविक्तदेश सेवित्वम् रतिरजन संसिधे अध्यात्म ज्ञानम नित्यात्म तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत्तु अन्यथा विनम्रता दम्भहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता परमानंद गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्म संयम इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा दुख दोषों की अनुभूति वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से बिलगाव आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो परमपिता ने इन बातों को हम सबके जीवन में धारण करने के लिए कहा है। ऐसा कहा है कि आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने के लिए हम सबको अपने दोषों को देखना चाहिए और दूसरों के गुणों को। अगर हम अपने दोषों को देखेंगे वो निकलेंगे, उनको निकालने का प्रयास करेंगे। अगर दूसरों के गुणों को देखेंगे तो वो हम में आ जाएंगे। लेकिन हम बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव सब समझते हो, बोलो सारे बोलो, जो जो समझता हाथ खड़ा करो। जो बद्ध जीव, बद्ध जीव क्या होता है, हाथ खड़ा करो। समझते हैं, बोलता कोई, हाथ क्यों नहीं खड़ा करते, बता। तू पीछे देखता, तेरे को बोलो तो पीछे देखता है, क्या कह रहा। बद्ध जीव तो माया जाल में बंधा हुआ है। क्या है माया जाल? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मस्तल, ईर्ष्या, दंभ, कपट, अभिमान, इन बातों में यह बद्ध जीव। मुक्त जीव कौन है? जो उनसे ऊपर उठ गया है। तो हम लोगों ने मुक्तावस्था की ओर जाना है, यानी इनकी बुराइयों, इन बुराइयों से मुक्त होना है। एक दिन हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, यानी शरीर छूट जाएगा। मुक्त का मतलब ये नहीं कि भगवान के पास जाएंगे, शरीर छूट जाएगा। इससे पहले कि शरीर छूटे, हमने इन बुराइयों से, बद्धावस्था से अपने आप को छुड़ाना है, ताकि हमारा अंतिम समय जब हो तो हमारा ध्यान भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हो। अंत समय में भगवान का ध्यान करना बहुत कठिन है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हां मैं भगवान का ध्यान कर लूंगा, बहुत कठिन। कफ पित्त बात यहां आ जाते हैं, गुरुड़ गुरुड़ होता है, शरीर में बड़ा कष्ट होता है, तो मन बड़ा विचलित हो जाता है। अभी कुछ घटना घटे तो मन विचलित हो जाता है, हमारे पापों के कारण सब कुछ है। तो अंत समय में क्या हो, इसलिए भगवान ने कहा है जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो, इनको देखो। क्यों ऐसा कर रहे हैं भगवान? क्योंकि वो हम सबके शुभ चिंतक हैं, हमारे असली पिता कृष्ण हैं। संसार के पिता आज हैं कल नहीं, ये छोड़ देंगे हमको, लेकिन असली पिता नहीं छोड़ेंगे अगर भक्ति के द्वारा हमने उनको पकड़ा होगा तो, वो नहीं छोड़ेंगे। तो एक बड़ी अच्छी बात प्रभुपाद जी ने कही है, एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद आप कहते हैं अंत में इतना कष्ट होता है तो हम कैसे भगवान को याद कर पाएंगे, इतने कष्टों से बहुत मुश्किल होगा। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण कृपा से, कृष्ण तुम्हें याद कराएंगे अपने आप। तो कृष्ण क्या कब याद कराएंगे? जब हम बुराइयों से मुक्त हो गए होंगे। जब बुराइयों से हमारा मन हट गया होगा, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मस्तिष्क ईर्ष्या दंभ कपट इनसे हम ऊपर उठते होंगे, फिर भगवान कहते हैं महात्मा नस्तु माम पार्थ। हम जब महात्मा बन गए होंगे, अभी अगर ये दोष है ना तो महात्मा नहीं है, फिर हम कौन है? दुरात्मा। जब गुण आ जाएंगे तो मैं महात्मा बन जाऊंगा, हम सबको महात्मा बनना है। दुरात्मा की दुर्गति और महात्मा की सदगति। जब हम महात्मा बन जाएंगे देवी प्रकृति महाशिता, भगवान कहते हैं मेरी दैवी प्रकृति के अधीन हो जाएंगे। वो कौन है? वो राधा रानी। दैवी प्रकृति कौन है भगवान की? वो है राधा रानी। जितना भी आध्यात्मिक संचालन है ना, वो सब राधा रानी करती हैं। आध्यात्मिक जगत का संचालन राधा रानी के अंदर है। कृष्ण राधा को पूछे बिना कुछ नहीं करते, ये याद रखो। प्रभुपाद ने एक बार कहा कि देखो वृंदावन के लोग जो है ना, उन्होंने राधा की शरण ले रखी है, एक दूसरे को मिलते हैं तो राधे राधे कहते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन के जो संचालन करने वाली है वो राधा रानी। अब देखो कि तीन बड़े विभाग हैं, एक शिक्षा, एक धन और एक रक्षा, एजुकेशन फाइनेंस और डिफेंस। तीनों विभाग ये बहुत बड़े हैं, तो तीनों विभागों को संचालन करने वाले तीनों देवी हैं। तीन देवियां हैं, शिक्षा विभाग सरस्वती माता, बोलो सरस्वती माता की, शिक्षा के लिए सरस्वती की वंदना होती है, और फाइनेंस धन लक्ष्मी जी, और डिफेंस दुर्गा माता। तो इस संसार में तो जब लोग भक्त नहीं है तो स्त्री को एक अच्छी नजर से नहीं देखते, वो स्त्री को एक सुख भोगने की मशीन देखते हैं। ऐसा जो करते हैं वो घोर नरक में जाते हैं। स्त्री हमारी माता है, हमारा जन्म स्त्री से हुआ था, इसलिए स्त्री का बहुत सम्मान करना चाहिए, और स्त्रियों को भी बड़ी मर्यादा में रहना चाहिए। अगर स्त्री मर्यादा में नहीं रहती वो भी सम्मान के योग्य नहीं है। फिर तो कह रहा था आपसे, अगर हम राधा जी के अधीन आगे महात्मा बन गए, मुझे बताना पड़ता है तुम लोगों को, तुम लोग नहीं देख सकते हैं, तो पीछे बैठा है ललित, देख नहीं सकता तू, सो रहा है तुम्हें, कुछ सोता तो उसको उठा के भेजते क्यों नहीं पीछे, इसका भाई कहां है दूसरा, ये जो खड़ा है इधर लंबा तीनों में, भाई किधर है, क्या कर रहा है? तो अगर हम महात्मा बन गए, भगवान कह रहे हैं महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो यत्वा भूतादिम अव्ययम्। तो महात्मा बनने के लिए भगवान का भजन अनन्य भाव से, अनन्य किसे कहते हैं, अन्य किसी का नहीं, केवल कृष्ण का अनन्य, अनन्य कहा भगवान ने खुद कहा, अनन्य करता है अन्य किसी का नहीं, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वो मेरी देवी प्रकृति यानी कि राधा के, ये भगवान तो उनकी शक्तियां काम कर रही हैं, उनको क्या काम करना है, उनका काम बस आनंद लेना है, खाली सुखों को, वो आनंद में है, उधर दुख का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो राधा जी के अधीन जब हम हो जाएंगे कृष्ण भजन करने के बाद, फिर अंत में कृष्ण का चिंतन हो पाएगा, नहीं तो अंत में कृष्ण का चिंतन संभव नहीं। तो हम सब लोग माया जाल में फंसे हुए हैं, स्त्री क्या पुरुष क्या, किसी को अंत की चिंता नहीं है, और अंत समय बहुत ही दुखदायी है। तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देव वर्णन कर रहे हैं, माता देवभूति धन्य है माता जिसने भगवान जिनके पुत्र बने, बोलो देवभूति माता की, बोलो कपिल भगवान की। माता देवभूति जो है, देखो जो भक्त हैं वो कैसे होते हैं, अभी कर्दम मुनि जी ने संन्यास ले लिया, अपनी पत्नी को बेटे को सौंप दिया भगवान को सौंप, तो माता कहती है मैं अबला स्त्री हूं, मेरा कैसे मोह माया छूटेगी, हे भगवान। उन्होंने अपने पुत्र को पुत्र नहीं माना, ये भगवान मेरे घर में आए हैं, मेरा आवागमन कैसे छूटेगा, मेरी मोह माया कैसे छूटेगी। तो बहुत सुंदर ज्ञान भगवान कपिल देव ने भागवत में माता देवभूति के माध्यम से हम सबको दिया है। माता देवभूति तो मुक्त आत्मा है, बहुत जिन्होंने भगवान को जन्म दिया। और देखो, भगवान को जन्म देने से पहले विषय लंबा हो जाता है, वो राजकुमारी है, मनु और शत्रुपा की पुत्री है, और उन्हें जब कर्दम मुनि कौन है तपस्वी है, उनके बारे में सुना तो कहा मैं उनसे विवाह करना चाहती हूं। एक राजकुमारी जंगल में रह के तपस्या करेगी, यही है भारतीय संस्कृति। आज की लड़की क्या सोचेगी किससे विवाह करना है, जो 9-2-11 है, है? जो या कोई एक्टर है उससे विवाह करना है और नरक में जाना है। राज भक्त भक्त से शादी नहीं करनी। जैसे एक आत्मा उसकी मां तो उसके लिए रिश्ते आए, एक रिश्ता आया धोती कुर्ते वाला, बड़े पैसे वाले लोग, तो कहती मैं इससे शादी नहीं करूंगी धोती कुर्ते वाले से, लड़के से मैं पेंट कोट वाले से शादी करूंगी। तो कितनी बुद्धिमान, वो ऐसा पेंट कोट वाला उसे, वो जो धोती कुर्ते वाले थे बहुत अच्छे लोग थे, वो बड़े पैसे वाले और अच्छे भी थे, पेंट कोट वाले से शादी की, ऐसा पेंट कोट वाला मिला वह दुर्गति कर दी उसकी। और क्या कहती थी वो आत्मा, वो कहती थी ये बुढ़ा मरता भी नहीं, कोई स्त्री कहती है पति मर जाए, कहती है बुढ़ा मरता नहीं, बुढ़ा बस शराब पीता था, शराब पी करके फिर वो आके नाटक करता था, आए बाद मुझे ये खाने के लिए दो सब्जी आई, ये सब्जी नहीं चाहिए रसे वाली चाहिए, रसे वाली कौन बनाएगा, 12 बजे रात थे, और उसके घर में कौन आत्मा पैदा हो गई लड़की उसकी, उसने देखा भाई ये तो मेरा बाप जो है वही मेरी मां को तंग करता है, जो ये हुआ उसको मिला ना धोती कुर्ते वाला, अपना पेंट कमीज वाला पेंट कोट वाला ऐसा मिला, उसने बोला कि तू कोई बात नहीं, कहते सब्जी, कहते मुझे रसली सब्जी चाहिए, क्या डाल इसमें पानी, पानी डाल दिया देखिए शराबी के पास, कहते इसमें नमक नहीं है, कहते कब से बनी हुई है, कहते कि वो उसका नाम नहीं है जिसका अकबर के टाइम की बनी हुई है सब्जी, जवाब दे रही है वो लड़की ऐसी पैदा हो गई। मुझे बोला अगर तू अगर मेरी बेटी नहीं होती तो मैं तेरे को, कहते अगर तू मेरा बाप नहीं होता तो तेरे को मार देती मैं। तो ये पेंट कोट वाला बड़ा बड़ी बुरी हालत होगी कलयुग में, भक्त नहीं चाहिए पेंट कोट वाला चाहिए, ताकि वो भी नरक में जाए मैं भी साथ पीछे पीछे जाऊं। तो हम सबने महात्मा बनना है, स्त्री भी बन सकती है पुरुष भी बन सकता है। अभी जैसे एक स्त्री की बात सुनाई, महारानी रत्नावली जो थी उसकी जो दासी थी, क्या नाम था उसका, रत्नावली, वो उसका रानी थी वो, अपना माधव सिंह की पत्नी, तो जो को भक्ति कहां से मिल सकती, उसने देखा कि उसकी जो दासी भोजन वगैरह बनाती है कभी कभी बेहोश हो जाती है, उसको रानी रत्नावली कहती है तो बेहोश हो जाती है तो मैं तेरा राज वैद्य जो है उससे इलाज करवाती हूं। वो दासी बेहोश क्यों होती थी? वो भक्त थी, कृष्ण की भक्त थी। उसने बोला बीमारी बता तेरे को क्या, कहते हैं तेरे को बताऊंगी बीमारी तू सुनेगी तो तेरे को भी लग जाएगी। रत्नावली कहती ऐसी बीमारी ऐसे खाने से जूठा खाओ या बीमार रोगी का संग करो तो बीमारी लगती है, लेकिन सुनने से बीमारी कैसे लग जाएगी? कहते लग जाएगी। कहते मेरे को बता तू, कहते नहीं है, बड़ा मना किया। अगर पीछे पड़ के रानी बता, उसने बताया, जब बताया तो रानी रत्नावली भी भक्त बन गई कृष्ण की, अभी भक्ति करे। कहते फिर बड़े मैं राधा कृष्ण लाके दूंगी, मूर्तियां लाके दी, और राधा रानी रत्नावली इतनी भक्त बन गई, महान भक्त। अभी उसने जो है भक्ति कर रही है वो, एक दिन साधु संत बुलाए, साधु संत आ गए, उनको भोजन परोसा, अपने हाथ से भोजन परोस रही है। पहले ही जो रानियां थी राजपूत वो पर्दे में रहती थी, किसी के सामने नहीं आती थी। उसने पर्दा हटा दिया और भक्तों के साथ संतों के साथ वो नाचने लग पड़ी। तो नौकर चाकू ने राजा को बताया, माधव सिंह को बताया। माधव सिंह और उसका बड़ा भाई था मान सिंह, उनको बताया कि रानी ने तो बस इसे देखती सारी ऐसा कर रही है। अच्छा, उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने बोला ऐसा है। उसका लड़का था प्रेम सिंह, प्रेम सिंह जो है उस पर भी रानी की कृपा, वो भी भक्त बन गया। उसने कंठी माला पहन ली और तिलक के लगा लिया। अब प्रेम सिंह गया एक बार अपने बाप के पास, क्या कहा प्रेम बाप ने, माधव सिंह ने क्या कहा, माधव सिंह ने क्या कहा, हाँ वो क्या, अच्छा यहां से चला जा, मुझे काला मुंह दिखाने क्यों आया है? देख लो मुंडा मुंडा क्या कहा था वो कहते रानी को क्या कहा था, है? रानी को क्या मुंड कहा था ना कुछ, मुंडी 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 क्या बोला, मुंडी बैरागन, बैरागन मुंडी बैरागन के। तो रानी ने बाल बढ़वा लिए, मुंडी कहां गई, आकर उसने देखा जब राजा पड़ा वही हमारी बेइज्जती हो गई, ये क्या हो रहा है। तो जंगल में एक शेर था, वो आदमी का मांस खाता था, मुंडी बैरागन के भूत, मुंडी बैरागन के भूत, ये शब्द लिखाना क्या है, देखो स्त्री कैसे भक्त बन जाती है, मुंडी बैरागन के भूत। तो एक शेर था जंगल में, उस शेर आदमी का मांस खाता था। जब शेर को आदमी के मांस खाने का स्वाद लग जाए फिर और मांस नहीं खाता, आदमी का ही खाता है। आदमी का मांस बड़ा स्वादिष्ट है, जैसे चाइना में बच्चों का मांस खाते हैं, जो बच्चे अबॉर्शन किए जाते हैं उनको फेंकते नहीं, और रेस्टोरेंट में बन के उनको लोग खाते हैं, चाइनीज लोग तो सब कुछ खाए जाते हैं। तो बताया राजा को, माधव सिंह को बताया कि ऐसे ऐसे शेर है, कहते भाई किसी तरीके से उसको पकड़ो। शेर को पकड़ लिए, पकड़ लेते हैं शेर को, पकड़ लिया जब तो उसको बंद कर दिया पिंजरे में, पिंजरे में जब बंद कर दिया, हरिबोल हरिबोल, कैसे खेंच रहे तुम्हें, ठीक आदमी नहीं है, कोई और की सेवा लगाओ, खेंचता है उनको तरीके से नहीं बताता। मुंडी बैरागन के भूत, तो शेर को पकड़ लिया, 8 दिन तक शेर को भूखा रखा, कुछ नहीं दिया खाने के लिए। बोला भाई माधव सिंह ने, भाई ये रानी के कमरे में छोड़ दो, जब रानी रत्नामणि का विवाह हुआ था कितने सौ गांव दिए थे? 1100 1000 गांव दिए, 1100 1000 गांव साथ में दान दिए थे, दान कन्यादान के साथ राजा को। जब रानी घर में रही तो अपने को उन्हीं गांवों से कमाई जो होती थी वो खाती थी, राजा का कुछ नहीं लेती। अभी वो भजन करती, अभी रानी इतनी भक्त हो गई उसने दासी को ही पीछे छोड़ दिया, शेर को जब छोड़ दिया शेर आ गया, मुंडी बैरागन के भूत। शेर जब रानी के पास आ गए तो दासी जिससे भक्ति सीखी वो कहती है, रानी देखो शेर आ गया, शेर आ गया, सिंह आ गया। कहती ये भगवान का दरबार है, यहां कोई कलता आदमी नहीं आ सकता, नृसिंह भगवान आए। आ गया शेर, शेर ने कुछ नहीं कहा, बैठा दिया शेर को, आसन दिया बैठने के लिए, शेर बैठ गया, नरभक्षी शेर वो बैठ गया और उसके गले में माला डाली रानी ने, माला डाली, उसको भोग लगाया, उसकी आरती की, आरती की तो आरती करके शेर ने जब मत्था टेका शेर को तो शेर ने रानी के सर पर अपना सर रख दिया, अपना सर नहीं रख दिया, आशीर्वाद दिया, पंजा रखा, कुछ नहीं कहा। उसके बाद शेर जा रहा है, जब तो चुपके ये माधव सिंह देख रहा है, माधव सिंह और मान सिंह दोनों देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं चुपके जा रहा है। तो उसे वो छुपे हुए थे, उस शेर उधर हाथ मारे उनको खाने के लिए, पर जाने शेर जा नहीं सकता था, खाली देख रहे थे। अब शेर वो जो जिन्होंने था वो नौकर चाकर थे ना, सबको मार दिया, मार के शेर फिर से जंगल में चला गया। ये होते हैं भक्त, और स्त्री है वो जो भक्त बन गई, उसे कोई डर नहीं किसी से, लेकिन मौका किसी के चिराग तले अंधेरा, किसी को मौका भक्ति करने का नहीं, नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं और नरक में जाना है। अरे भगवान की जब निष्काम सब कुछ छोड़ के सेवा करोगे, कुछ भी चाहिए अनन्य, हे कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके, कोई नौकरी नहीं मुझे, कोई पैसे नहीं, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, मुझे बस आप चाहिए, तो भगवान मिलेंगे, लेकिन हमको छोड़ नहीं सकते, ऐसे मोह जाल में फंसे हुए। तो सब भक्त बनो भगवान के, भगवान का भक्त बनने से कल्याण होगा, भक्त नहीं बने तो बस नरक में जाना पड़ेगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, अंते नारायण स्मृति नहीं होगी, तो कृपा करके सब याद रखो इन बातों को और अपना भविष्य उज्ज्वल बनाओ। बोलो भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो भगवद गीता के कारण देने वाले पूरे संसार को जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। मुंडी क्या बोला, मुंडी मुंडी भैरा, मुंडी भैरागन के भूत, ही भूल गया था मैं बात। किसी को कोई प्रश्न? जोर से बोल। नित्य पद इसलिए है कि अभी माया के अधीन हो गई है, उसमें दोष आ गए हैं, बद इसलिए हो गई, फिर भक्ति करके जब दोष निकल जाएंगे तो मुक्त हो जाएगी। समझाई? और कोई प्रश्न क्या? हाँ है,
पूर्ण रूप में तो हम ये जो है चार नियम पालन करते हैं और पाप काम में लिप्त नहीं होती, लेकिन जो सूक्ष्म रूप में हमारे मन में जो है ये काम तो
बने रहते हैं। धीरे धीरे जैसे भक्ति बढ़ेगी सूक्ष्म रूप से भी चले जाएंगे। अभी भक्ति का अभाव है ना, दो बातें हैं, एक है अंधेरा एक है प्रकाश। अभी पहले अभी अंधेरा था कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अभी प्रकाश आया सब कुछ दिखाई दे रहा। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार। अगर जो कृष्ण सूर्य के समान है उनको अगर आप सदा अपने हृदय में रखोगे तो अंधकार रूपी माया नहीं आएगी, प्रकाश जब हो जाएगा तो अंधकार नहीं आएगा। सूरज निकले तो अंधकार चला गया, सूर्य जब अस्त हो जाएगा तो अंधकार आ जाए, अंधकार अभी भी आए लेकिन सूर्य की उपस्थिति में नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए कृष्ण रूपी सूर्य को सदा हृदय में रखना है, राधा रानी की कृपा से, भक्ति माता की कृपा से। समझाइए, और कोई प्रश्न किसी को, किसी माता को? मुंडी मुंडी भेड़ा मुंडी भैरा घन के भूत बोलो महारानी रत्ना बली की। अभी देखो जब वो शेर आया था तो दासी डर गई जिससे भक्ति सीखे, लेकिन रानी भी डरी, बोला भगवान का स्वरूप कुछ नहीं कहा शेर, क्योंकि हर प्राणी के हृदय में भगवान विराजमान है, याद रखो हर प्राणी के। एक बार मुझे एक हम सरदार को तो प्रचार करने लगे अमेरिका में, वो उग्रवादी था, यहां से भागा हुआ इंडिया से, अमेरिका में रहता था, कई लोगों को मारा था, हमें क्या पता था, ऐसा तो बताया नहीं। उसको हम प्रचार करने लगे, उसके घर में चले गए, वो हमको मारने के लिए ले लिया, हमें पता लग गया मार देगा हमको, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो हमको मार सके। फिर बाद में उसका असली रूप प्रकट हो गया, फिर जेल में भी चला गया, उसके बाद उसको जेल हो गई 5 साल की वहां। कई बार देखे हाथ से ऐसा जहरीला सांप लगा कि वो ऐसे जमीन से ऊपर जाके यहां काटता है, उसको गुनाह कहते हैं। मेरे हाथ से लगा, कुछ नहीं कहा, जमीन के अंदर चला गया, भगवान रक्षा कर रहे। जब तक उसकी अनुमति नहीं होगी कोई कुछ नहीं कह सकेगा, ये याद रखो। मुंडी बैरागन के भूत, ठीक है। और किसी को प्रश्न? अभी कुंती माता भी ऐसा ही बनना चाहती है, मुंडी बैरागन के भूत, बाल काटना चाहती है अपने, काट दे। कई माताएं काट लेती हैं, चोटी रख ले बाल साफ कर दे, ठीक है, तो तेरा नाम ही हो जाएगा मुंडी बैरागन के भूत पूत, मुंडी बैरागन के पूत हो जाएगा, पूत होगा भूत। बोलो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।